एक मिनट के लिए सीधा होकर बैठेंगे। बॉडी को रिलैक्स करके 3 deep breaths, एक छोटी सी 1 minute की एक्सरसाइज होगी। और ये 1 minute एक्सरसाइज आप इस 3 दिन में बार बार करेंगे। और जब आप यहां से जाएंगे, आप दिन में कई बार करेंगे। अभी हम सिर्फ इसको करते हैं, बाद में हम देखेंगे कि इसका बेनिफिट क्या होता है। इसमें बॉडी ने कुछ भी नहीं करना है, बॉडी स्टिल रहेगी, रिलैक्स्ड रहेगी। आज सुबह के सेशन में हमने देखा कि आत्मा 3 काम करती है। जब वो सोचने का काम करती है तो उसे मन कहते हैं, जब वो निर्णय लेने का काम करती है या वो विजुअलाइज करने का कार्य करती है तो उसको बुद्धि कहते हैं, और जब मन संकल्प करता है और बुद्धि उसको विजुअलाइज करती है तो हम उसको अनुभव करने लग जाते हैं और वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो हम 1 मिनट में इन 3 faculties को यूज करेंगे। सबसे पहले भ्रिकुटी के बीच इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड खुद को विजुअलाइज करें, एक पॉइंट ऑफ लाइट, चमकता हुआ सितारा। एनर्जी इन आंखों से नहीं दिखाई देती है, तो हम उसको विजुअलाइज करते हैं। जिस पॉइंट पे हम तिलक लगाते हैं वो एनर्जी सेंटर है, उस पॉइंट पर विजुअलाइज करेंगे चमकता हुआ सितारा। इसको होल्ड करना है, देखते रहे। मैं आत्मा, शक्ति। अब साथ में मन की फैकल्टी को यूज करते हुए संकल्प करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। देखते रहना है खुद को पॉइंट ऑफ लाइट, और साथ में थॉट क्रिएट करने हैं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। आई एम अ पावरफुल सोल। एक थॉट क्रिएट करनी है, होल्ड करना है उसको। जस्ट 1 thought, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अगर कोई और थॉट आया बीच में, जेंटली वापस अपने उस एक थॉट की पोजीशन में जाएंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। सेकेंड थॉट, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ पीसफुल सोल। खुद को देखते हुए पॉइंट ऑफ लाइट, और खुद को स्मृति दिलाते हुए कि मैं कौन, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। जस्ट 1 thought, एक संकल्प को पकड़ना है। जैसे हमने इस संकल्प को पकड़ा हुआ है, हमारी वाइब्रेशन बदल रही है। ये शांति की शक्ति की वाइब्रेशन पूरे शरीर में भी रेडिएट कर रही है। और मुझसे निकलते हुए ये वाइब्रेशन इस वायुमंडल में फैल रही है। अब खुद को देखें अपने ऑफिस में बैठे हुए, जहां पर आप सारा दिन बहुत कार्य करते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। उस वायुमंडल में बहुत शोर है, शब्दों का शोर नहीं, संकल्पों का शोर होता है। तो अपने आप को वहां बैठा हुआ देखें, अपनी कुर्सी पर बैठे हैं, आसपास बहुत कुछ चल रहा है और आप ये आधे मिनट का ब्रेक लेते हैं। किसी को नहीं पता चलता आप क्या कर रहे हैं और आप बस आधा मिनट एक संकल्प करते हैं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और इस एक संकल्प से आपके मन की स्थिति बदल जाती है, आपके शरीर की एनर्जी चेंज हो जाती है। आप जहां बैठे हैं आपके इर्द गिर्द का वायुमंडल चेंज हो जाता है। सिर्फ आधा मिनट हमारी एनर्जी को चेंज कर देता है। ओम शांति। सारा दिन में हम जो सोचते हैं उससे हमारा वायुमंडल बनता है, और जो वायुमंडल हम बनाते हैं उसका हमारे ऊपर असर पड़ता है। आप में से कुछ मेहमान कल आए हैं, कुछ आज सुबह आए हैं। ये वायुमंडल थोड़ा सा अलग है उस शहर से जहां से हम आते हैं। क्या आपको इस वायुमंडल में कुछ फर्क फील हो रहा है? यस एनीबडी, कोई फर्क फील हो रहा है? एनीबडी, यस, क्या फर्क फील हो रहा है आपको? पीसफुल एंड काम। एनीबडी एल्स? किस किस को पीसफुल लग रहा है? पीसफुल मतलब यहाँ जो संकल्पों की गति है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है, कम शोर मचता है। जिस शहर से हम आते हैं वहाँ हवा में शोर है, नॉन स्टॉप लोग सोचते रहते हैं, नॉन स्टॉप बोलते भी रहते हैं और नॉन स्टॉप कॉन्टेंट भी कंज्यूम करके उसका शोर भी वायुमंडल के अंदर है। और दुनिया ने उसके लिए एक शब्द दिया है जो है ओवरथिंकिंग, बहुत ज्यादा सोचना। और हम इतना सोचते हैं कि जब रात को सोने जाते हैं तब भी मन सोचते हुए सो जाता है, तब भी मन साइलेंट नहीं होता है। और ये सारी सोच जो यहाँ चल रही है और ये सारी सोच जो मेरे आसपास के वायुमंडल में है, उसका असर सिर्फ यहाँ नहीं पड़ता है, उसका असर हमारे शरीर पर भी पड़ता है। क्योंकि हमारी हर थॉट, इसको अंडरलाइन करके रखना, हमारी हर थॉट मेरे बॉडी के हर सेल को पहुंचती है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि मेजॉरिटी बीमारियां किस वजह से हो रही है? लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल में भी कौन सा शब्द अंडरलाइन होता है? स्ट्रेस। स्ट्रेस कहाँ क्रिएट होता है? यहाँ। तो बात वहां से आई, स्ट्रेस यहां क्रिएट हुआ लेकिन असर यहां हो गया। फिर हम यहां का ध्यान रखने के लिए खान पान को ठीक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहां को नहीं ठीक करते। क्योंकि हम कहते हैं यहां को कैसे ठीक करें, यहां तो अब जो चल रहा है वही चलेगा ना। अगर हमने ये वाली इक्वेशन बना के रखी कि जो कुछ मेरे आसपास चल रहा है वही यहां चलेगा, तो ना ये शांत रहेगा और इसका स्वस्थ रहना भी मुश्किल होगा। तो राजयोग हमें एक बहुत सुंदर पावर देता है और वो पावर ये है कि बाहर शोर होगा, शोर मतलब लॉट ऑफ एक्टिविटी, और वो एक्टिविटी का शोर नहीं होता, लेकिन लॉट ऑफ एक्टिविटी में लॉट ऑफ थिंकिंग जो लोगों की चल रही होती है उसका शोर होता है। उसमें कुछ लोग हमारे अनुसार होंगे, कुछ हमारे अनुसार नहीं होंगे। आपसे तो मेजॉरिटी जो लोग मिलने आते हैं वो भी अपनी प्रॉब्लम्स ही सुनाने आएंगे, अपनी बातें बताने आएंगे, वो कोई खुशखबरी तो लेकर आपके पास आने नहीं वाले हैं। तो जो आपकी कॉन्वर्सेशंस हैं उसमें भी दर्द होता है, चिंता होती है, डर होता है, हर रोज की कॉन्वर्सेशन में वो होता है, राइट? तो वो कॉन्वर्सेशन भी जब आप किसी की शब्दों को सुन रहे हैं तब भी वो शब्द कहाँ पहुंच रहे हैं? यहाँ कोई बैठा है आपसे बात कर रहा है, कहता है ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, आप सुन रहे हैं क्योंकि वो हमारा रोल है ना सुनना। लेकिन जब आप सुन रहे हैं उस शब्दों का असर कहाँ कहाँ हो रहा है? सुन तो यहां से रहे हैं लेकिन उन शब्दों का असर कहाँ हो रहा है? पहले यहां हो रहा है, फिर यहां से कहां हो रहा है? यहां भी हो रहा है, फिर वो हमारे आभा मंडल में वो शब्द आ जाते हैं सारे, और ये आभा मंडल हमारे साथ घर जाता है। और जब ये आभा मंडल हमारे साथ घर जाता है, हमारा आभा मंडल हमारे घर का वायुमंडल बनाता है। ये कैंपस है, यहां भी सारा दिन बहुत ज्यादा एक्टिविटी है, बहुत मतलब बहुत। यहाँ की एक्टिविटी शुरू होती है सुबह 3:30 बजे से, पूरी होती है रात को 10-10:30 बजे, और यहाँ संडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि छुट्टी होती है। यहाँ 7 दिन 365 दिन एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ ये प्रैक्टिस है कि बाहर बहुत एक्टिविटी है लेकिन यहाँ को कैसे करना है? साइलेंट। साइलेंट मतलब बस मिनिमल सोचना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट हर परिस्थिति में हाईएस्ट एनर्जी की थॉट क्रिएट करनी है। तो यहाँ बहुत ज्यादा एक्टिविटी है लेकिन यहाँ साइलेंस की प्रैक्टिस है, कम थिंकिंग। ठीक है, कौन सा बेटर है, ओवर थिंकिंग या कम थिंकिंग, कौन सा बेटर है? जब आपको किसी को परखना है, जब आपको किसी बात पर निर्णय लेना है, जब आपको कोई एक्शन सोचना है अपने माइंड में कि क्या करना है, यहां क्या होना चाहिए, कम थिंकिंग या ज्यादा थिंकिंग, क्या होना चाहिए? अगर मैं किसी से मिलूं, मुझे परखना है उनको, आई हैव टू डिसर्न ये क्या बोल रहे हैं, ये सिर्फ इनका नजरिया है, इसमें सच कितना है, क्या ये सब कुछ बता रहे हैं या कुछ ये मिला रहे हैं, आई हैव टू डिसर्न द पर्सन, मुझे परखना है किसी को, उसमें यहां पर शोर चाहिए या साइलेंस चाहिए? साइलेंस चाहिए। और अगर उस बात पे फिर हमें अपने लिए पर्सनली कोई निर्णय लेना है तो यहां शोर चाहिए या साइलेंस चाहिए? साइलेंस चाहिए। लेकिन जब हम सारा दिन यहाँ शोर क्रिएट कर रहे हैं तो एकदम से साइलेंस कैसे क्रिएट हो जाएगा वहां पे, वो तो हो नहीं पाएगा। तो फिर हमारा परखना भी शोर के थ्रू ही होगा और हमारा निर्णय भी शोर के थ्रू ही होगा। और ये मन का शोर हमारे लिए एक नेचुरल जीवन जीने का तरीका बन जाएगा, ये स्वभाव बन जाएगा। और ये जो मन का शोर है, इसी को हम तनाव कहते हैं, इसी को हम चिंता कहते हैं, इसी को हम इरिटेशन कहते हैं, इसी को हम गुस्सा कहते हैं, ये मन का शोर ही है। कभी कभी ये शोर सिर्फ अंदर तक रहता है, कभी ये हमारे शब्दों में आ जाता है, कभी ये हमारे व्यवहार में आ जाता है। अब दिन ब दिन आपको क्या लगता है, ये मन का शोर बढ़ेगा या घटेगा? दिन ब दिन। और अब जो हम समय में चल रहे हैं, ये सिर्फ मेरे मन का शोर नहीं है, ये आसपास का वायुमंडल की वजह से भी मेरे मन में शोर है। आपको पता है जब से हमारे हाथ में फोन आया है, जब हम खाली भी होते हैं तो हम खाली नहीं बैठते हैं, हम क्या कर लेते हैं तुरंत, हम तुरंत इस, जैसे ही हम ये करते हैं हमने शोर को बढ़ा दिया क्योंकि हमने और इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर दी। एंड शायद ही कोई है अभी जिसके हाथ में ये फोन नहीं है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी है। तो वो छोटे बच्चे जिनके मन साइलेंट हुआ करते थे और जिनके साइलेंस की वजह से भी वायुमंडल में एक प्योरिटी हुआ करती थी, वो भी खत्म हो गया है, क्योंकि बहुत छोटी एज में उनके हाथ में भी ऐसे 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 करते, तो ये स्टिम्युलेट होता रहता है। और जितना दुनिया में परिस्थितियां बदलती जाएंगी, मन की स्थिति परेशान होगी, शोर और बढ़ता जाएगा, वायुमंडल में और शोर होगा, हमारे मन में शोर और बढ़ता जाएगा। बाकी आपके पास जो लोग आने वाले हैं वो तो और बढ़ने ही वाले हैं, तो अब हमारे पास क्या सलूशन है? क्या हम ऐसे ही शोर के साथ जीते रहेंगे जीवन? यस, ऐसे जीते रहेंगे या इसमें कुछ चेंज हो सकता है? इसमें चेंज हो सकता है? किस किस को लगता है हो सकता है, और किसको लगता है करना चाहिए, और किसको लगता है अब ऑप्शन नहीं बड़ी पच्ची करना ही पड़ेगा, नहीं तो किसका नुकसान हो रहा है? हमारा भी नुकसान हो रहा है और वो हमारे वायुमंडल में भी जा रहा है। इस समय आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपके बच्चों का मन शांत हो, आपको अपने मन को शांत करके उस शक्ति से उनके मन को शक्तिशाली और शांत बनाने की उनको पावर देने हैं, क्योंकि उनके मन को बहुत ज्यादा इस समय शक्ति की जरूरत है। लेकिन हम तो एट द एंड ऑफ द डे खुद ही इतनी सारी बातों के साथ माइंड पर आते हैं कि हम उनकी मन की शांति और शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे। इसीलिए मेडिटेशन विश्व की हर आत्मा के लिए जरूरी है, हर प्रोफेशन के लिए जरूरी है, लेकिन जो प्रोफेशन पेन के साथ वर्क करते हैं सारा दिन, जो प्रोफेशन ज्यादा दिन कुछ ना कुछ जो गलत हो रहा है वो सुन रहे हैं, वो सारा दिन उसको सुन रहे हैं जहां कुछ झगड़ा हो रहा है, जहां कुछ डिस्प्यूट है, जहां कुछ प्रॉब्लम है, गुड न्यूज आपके पास बहुत कम आती है, तो उस प्रोफेशन के लिए मेडिटेशन क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कंपल्सरी। किस किस को लगता है कंपल्सरी होना चाहिए? वेरी गुड। अब आपके लिए कंपल्सरी कौन बनाएगा? आपके लिए कंपल्सरी कौन बनाएगा? रखो उंगली उसके ऊपर, कौन बनाएगा? वेरी गुड। आप रेडी हैं अपने आपके लिए कंपल्सरी बनाने के लिए? आपके पास टाइम है करने के लिए रोज? दुनिया की ये वोकैबुलरी बन गई है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम सबके पास उतना ही है, उस टाइम में मैं किस चीज को प्रायोरिटाइज करती हूँ वो चॉइस मेरी होती है, राइट? अगर मैं उस टाइम में फोन को स्क्रॉल करना पसंद करती हूँ, दैट इज ऑल्सो नो प्रॉब्लम, इट इज माई चॉइस, वो मेरी प्रायोरिटी है। अगर मैं उस टाइम में न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करती हूँ, वो मेरी चॉइस है, वो प्रायोरिटी है। अगर मैं उस टाइम में 5-7 मिनट साइलेंस में बैठकर अपने माइंड को स्ट्रांग बनाती हूँ, तो वो भी मेरी प्रायोरिटी है। समय उतना ही है, और समय को कैसे यूज करना है वो कोई और नहीं डिसाइड करेगा हमारे लिए। वो कौन डिसाइड करेगा हमारे लिए? हमें खुद डिसाइड करना है। क्यों हमें अपने मन की शक्ति को बढ़ाना, प्रायोरिटी बनाना है? क्योंकि हमारा वायुमंडल दिन ब दिन ऑपोजिट होता जा रहा है, और अगर मैंने अपने आप को इस वायुमंडल के प्रभाव से ऊपर नहीं उठाया, तो वायुमंडल का प्रभाव मुझ पर पड़ने वाला है। तो बेसिक राजयोगा मेडिटेशन का जो लक्ष्य है वो ये है कि अपनी एनर्जी फील्ड को क्या करते जाना, क्या करते जाना? ऊपर 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 करते जाना। एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, कुछ क्राइटेरिया दिए जाएंगे, आप अपने को नंबर देंगे। ये किसी को बताने नहीं है, नंबर अपने अपने लिए है। जैसे हम बॉडी की स्कैनिंग के लिए ब्लड टेस्ट कराते हैं, 24 घंटे के बाद एक रिपोर्ट सामने आती है, वो हमें बता देती है क्या क्या नॉर्मल में है, क्या क्या नॉर्मल में नहीं है, और जैसे हम उसको देख लेते हैं हम उसको फिर चेंज करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन मन की स्थिति का टेस्ट कोई और नहीं हमारे लिए कर सकता है, वो टेस्ट किसको करना होगा? वो हमें खुद को करना होगा। चलो एक मिनट सीधा जो सुनेंगे अपने आप को बस आंसर देते जाना, या अपनी डायरी में लिखना, महीने बाद वो वैल्यू चेंज हो जाएगी अगर हर रोज मेडिटेशन करेंगे। आउट ऑफ 10 अपने को नंबर देने हैं, हम अपने इमोशनल हेल्थ का स्कोर कर रहे हैं, हम अपने इमोशनल हेल्थ का स्कैन कर रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं। पहला क्राइटेरिया, आपको उसमें 10 में से अपने को नंबर देने हैं। जब भी कोई सिचुएशन आती है, एंड ये वर्क रिलेटेड नहीं है, ये कोई भी सिचुएशन है सारा दिन में, घर में, बच्चों के साथ, बॉडी की हेल्थ के साथ, एनी सिचुएशन. जब भी कोई सिचुएशन आती है जो फेवरेबल नहीं है, जो मेरे अनुसार नहीं है, तो क्या मेरी सोच, मेरा व्यवहार, स्वभाव सिचुएशन पर डिपेंडेंट होता है? और जैसी सिचुएशन वैसी मेरे मन की स्थिति. जितना मेरे मन की स्थिति सिचुएशन पर डिपेंडेंट है उतना आपका स्कोर नीचे है. अब अपने आप को स्कोर दे दीजिए. मतलब आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए, किसी ने आपसे बहुत गलत तरह से व्यवहार किया, वो एक सिचुएशन है. आपको बुरा लगा, कितना बुरा लगा, गुस्सा आया, नहीं आया, आप चुप रहे, शांत रहे, अपने आप को स्कोर देना है कि सिचुएशन का मेरे मन की स्थिति पर कितना असर पड़ता है और मेरे व्यवहार पर असर पड़ता है. अगर बहुत ज्यादा असर पड़ता है तो 0, 1, 2, 3 उतना देना है. अगर बस थोड़ा सा असर पड़ता है तो 5, 6 देना है. अगर बिल्कुल असर नहीं पड़ता, हम बिल्कुल अनटच्ड होते हैं, तो 9, 10 इतना देना है. अब आप अपने को दे दीजिए इसको. किसी को हम बताने नहीं वाले हैं, तो बस अपने आप के लिए सच्चाई से करो और फिर उसको हर महीने चेक करो. सबने लिख लिया अपना स्कोर? माइंड में नहीं लिखना, डायरी में लिखना है. और डायरी नहीं है तो फोन पे टाइप करें. कर लिया सबने? एवरीबडी, किस किसने कर लिया? ओके. सेकेंड क्राइटेरिया, मन की स्थिति थोड़ी सी हलचल में आई, अब उसको ठीक होने में कितना टाइम लगता है? आधे एक मिनट में ठीक हो जाती है, गुड स्कोर. कई मिनट लग जाते हैं, थोड़ा कम स्कोर. पूरा दिन बात नहीं भूलती है, और कम स्कोर. बहुत बातें आज तक नहीं भूली हैं, और कम स्कोर. मतलब दाग लगा, दाग कितनी देर तक रह जाता है मन के ऊपर? 10 देना है. तीसरा क्राइटेरिया, लोगों को क्षमा करना. पर्सनल अपने लाइफ के अंदर किसी ने कुछ गलत किया, बिहेवियर गलत, कुछ भी पर्सनल, प्रोफेशनल, एनीथिंग जो मेरे हिसाब से वॉज रॉन्ग. पहले तो चोट कितनी लगी, वो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था. थर्ड है, अब उसको फॉरगिव एंड फिनिश कैसे करते हैं? आपके लिए फॉरगिव करना आसान है? कुछ लोग एकदम एक सेकेंड में बोलते, इट्स ओके, ना खत्म करो बात, फिनिश्ड. एंड फिनिश्ड मतलब फिर उनको वो बात कभी याद नहीं आती है. ये नहीं कि यहां से बोल दिया, इट्स ओके, फिनिश्ड, बोलना नहीं, यहां से वो फाइल डिलीट हो गई. हम उस व्यक्ति के लिए उतना ही अच्छा सोच रहे हैं जितना हम पहले सोच रहे थे या फील करते थे. जैसे कि वो सीन एक आया और सीन चला गया, एंड आई एम अनटच्ड, मेरे अंदर कोई फर्क नहीं आया है उस सीन का. वो है फॉरगिवनेस. अब अपने को स्कोर दो. अगर आपके लिए फॉरगिव करना बहुत सहज है तो आप 9, 10 तक दो. करते हैं फॉरगिव, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है. 5, 6 तक दो. बहुत मुश्किल लगता है लोगों को फॉरगिव करना, भूलती नहीं वो बात. वो एक गाना है जो बीच बीच में फिर बजता रहता है. कोई सामने आता है तो फिर याद आ जाता है गाना, या कोई वो ही सामने आते हैं तो फिर बात याद आ जाती है. तो फिर अपना स्कोर थोड़ा सा लो है. एंड लास्ट, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं या सोचते हैं? व्हाट डू पीपल थिंक अबाउट मी? लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और कहते हैं, उसका मुझ पर कितना असर पड़ता है? पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक मतलब एवरीबडी, फैमिली, फ्रेंड्स, प्रोफेशनल्स, स्ट्रेंजर्स, क्लाइंट, कोई भी. विच मीन्स लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है. अगर लोग मेरे लिए कुछ अच्छा बोलते हैं मुझे चार दिन तक भूलता नहीं, इतनी खुशी होती है। मतलब महिमा भी बहुत अच्छी लगती है, और जितनी महिमा अच्छी लगेगी उतनी, जितनी महिमा अच्छी लगेगी उतनी निंदा क्या होगा बताइए, जितनी महिमा अच्छी लगेगी उतनी निंदा क्या होगी, बुरी लगेगी। कोई कनेक्शन है दोनों के बीच का? अच्छा चलो अपने आपको स्कोर दे दो फिर देखेंगे। अब टोटल कर दो 40 में से और टोटल स्कोर दे दो 10 में से, टोटल इमोशनल हेल्थ का स्कोर दे दो अपना 10 में से। फर्स्ट क्या था, परिस्थिति के प्रति मेरा रिएक्शन। सेकंड क्या था, माइंड कितनी देर में सेटल हो जाता है। जैसे एक नदी में से पत्थर डालो तो जैसे तरंगे बनती है, वो तरंगे कितनी देर में सेटल होती है माइंड के अंदर। काम कर रहे हैं लेकिन माइंड में अभी भी वो थोड़ी सी हलचल चलती है, वो स्कोर था। थर्ड था हम फॉरगिव कितना आसानी से कर लेते हैं, और फोर्थ क्या था, निंदा और स्तुति में हम कितना अफेक्ट होते हैं। ये टोटल करके और टोटल 10 में से एक स्कोर बना दो। अब तो 40 का टोटल करो, 4 से डिवाइड करो और एक स्कोर बना दो। ये है मेरा इमोशनल हेल्थ स्कोर। जिस जिसने बना लिया हाथ करें करें, पता चले होमवर्क हो गया, वेरी गुड। अब सभी आंख बंद करेंगे आधे मिनट के लिए, बिल्कुल बंद करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए आप आंख नहीं खोल सकते। अब आपको कोई नहीं देख रहा है, अब हाथ उठाइएगा किसका, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब बताओ हाथ उठाओ जिसको 10 चाहिए, किस किस को 10 बनाना है अपना स्कोर। वेरी गुड, चलो वापस आ जाए। अब इस स्कोर को लिख के रखना, और फिर अगर आप 2 महीने भी हर रोज मेडिटेशन करते हैं, आप वापस इस पेज पर जाना अपनी डायरी में, और आप वापस अपने आप को स्कोर करना। क्योंकि कई लोग कहते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं कैसे पता चलेगा हमारा मेडिटेशन वर्क कर रहा है, तो अगर मैंने आज ब्लड रिपोर्ट मुझे आया और फिर मैंने कुछ कुछ देखा कि ठीक नहीं है, तो मैंने अपने खान पान में कुछ चेंज करना है, चेंज करके मैंने 3 महीने बाद फिर से टेस्ट कराना है, और 3 महीने के बाद टेस्ट करा के मुझे पता चल जाएगा कि मेरी लाइफ स्टाइल चेंज मेरे लिए वर्क कर रही है। और एक बार पता चल गया कि वो मेरे लिए वर्क कर रही है, फिर उसके लिए टाइम निकालना, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता नहीं है, वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पर आ जाता है। और जितना जितना हमारा ये इमोशनल हेल्थ स्कोर बढ़ता जाएगा, आपकी परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ क्लटर नहीं है। बात आई, आप डिस्टर्ब नहीं हुए, यहाँ शांति है। किसी ने कुछ गलत किया, आधा मिनट के लिए अच्छा नहीं लगा, उसके बाद बात को खत्म किया, यहाँ शांति है। किसी ने आपके बारे में अच्छा नहीं कहा, इट्स ओके, वो उनका नजरिया है, यहाँ शांति है। लेकिन अगर हमने कहा ऐसे कर दिया, उसने ये कर दिया, वो ऐसे कैसे कर सकता था, तो शोर है। और वो शोर दिन का जो होता है वो रात को भी अच्छी नींद सोने नहीं देता। किस किस को सुबह उठ के थोड़ा सा और सोने का मन करता है? समाज में आजकल सब लोग हाथ उठा रहे हैं, तो आप हाथ ना उठाओ तो वो सरप्राइजिंग होगा। नहीं, बिकॉज अगेन हर प्रोफेशन का एक जिम्मेवारी है, लेकिन हर प्रोफेशन का एक रेपरकशन भी है। जैसे एक डॉक्टर है, वो पूरा दिन हॉस्पिटल में बीमारी के आसपास है। अगर उस डॉक्टर की फिजिकल इम्यूनिटी अच्छी नहीं हुई और उसने सारा दिन आईसीयू में जाना, ये करना, इन सब लोगों से मिलना, तो इन्फेक्शन कैच करने का चांस बहुत ज्यादा है। दूसरे इंसान का कम है चांस, लेकिन जिसने चूज किया है डॉक्टर बनना, उसका इमोशनल इन्फेक्शन कैच करने का चांस बहुत ज्यादा है। जिसने चूज किया है लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनना सारा दिन, उसकी इमोशनल इन्फेक्शन कैसी होनी चाहिए, फिर इम्यूनिटी कैसी होनी चाहिए? क्योंकि वो प्रॉब्लम वहां नहीं है सिर्फ, वो प्रॉब्लम यहां नहीं है सिर्फ, अब वो प्रॉब्लम कहां है, यहां है। तो दुनिया में लोग सिर्फ अपनी प्रॉब्लम्स के स्ट्रेस से ही इतने स्ट्रेस्ड हैं, सिर्फ अपनी जीवन की प्रॉब्लम से। आपके पास तो कितने सारे लोगों की है, तो फिर आपके माइंड को कैसा होना पड़ेगा, बहुत साइलेंट। तो अपनी डायरी में आज यहां से लिख कर जाना कि मेडिटेशन एंड सेल्फ केयर मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं, मेरे लिए ऑप्शन नहीं है, मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना ध्यान रखने की। और जितनी आपकी एनर्जी उठती जाएगी ना, दोनों हाथ ऐसे रखें, एक मिनट, लेफ्ट हैंड पे आप उसको रखें जो आपसे मिलने आया है अपनी प्रॉब्लम के साथ, ठीक है, और राइट हैंड पे आप हैं, तो जो लेफ्ट हैंड पे है उसकी स्थिति किधर है? छोटी छोटी बातों से भी आएंगे तो डाउन है, बाकी कोई बहुत बड़ी बात लेकर आएगा तो बहुत डाउन है। वो डाउन ही आ रहे हैं। आपका प्रोफेशन वो है जो आपके पास हाई एनर्जी वाले नहीं आ रहे, वो प्रॉब्लम के साथ आ रहे हैं, वो झगड़े के साथ आ रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ आ रहे हैं, ये अलग बात है, वो क्राइम के साथ भी आ रहे हैं, ठीक है। तो आपसे जो मिलने आ रहा है उसकी एनर्जी कहाँ है? लेफ्ट हैंड इधर है। अगर आपने अपनी इम्यूनिटी सिस्टम का ध्यान नहीं रखा है एवरी डे, तो धीरे धीरे ये एनर्जी क्या होने वाली है? तो फिर हम कहते हैं अब ये प्रोफेशन चूज किया है तो स्ट्रेस तो होना ही है। ये लाइन तो रॉन्ग है, फिर तो कोई चूज ही ना करे ऐसा प्रोफेशन। फिर इट इज ओनली वी हैव टू चेंज द लाइन टू ये प्रोफेशन चूज किया है तो अपने मन का ध्यान रखना जरूरी है। ये नहीं कहना है ये प्रोफेशन चूज किया तो स्ट्रेस तो होगा ही नहीं। हम भी सारा दिन लोगों के दर्द ही सुन रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स ही सुन रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम हर रोज अपना ध्यान रख लेते हैं तो वो प्रॉब्लम यहां तक आती है, यहां तक आती है, यहां तक नहीं आती। और उसके लिए सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है, वो कहां पर है? लेफ्ट हैंड कहां पर है? एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है? लोअर टू हायर या हायर टू लोअर? बोलिए, एनर्जी कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है? लोअर टू हायर या हायर टू लोअर? अगर आप उसके आसपास की एनर्जी पर होंगे ना जो आपसे मिलने आया है, तब उसकी वाइब्रेशन आप पर असर कर जाएगी। अगर आपको उसकी वाइब्रेशन से, इन्फॉर्मेशन से प्रॉब्लम नहीं आती, वाइब्रेशन से प्रॉब्लम आती है। जब हम किसी से मिल रहे होते हैं उनका आभा मंडल का असर हमारे पर पड़ेगा। आप अलग अलग, जब आप एक बार वाइब्रेशन फील करना शुरू करेंगे ना, आपको पता चलेगा ये व्यक्ति हैवी एनर्जी से आया है, ये व्यक्ति अच्छी एनर्जी से आया है। एवरीबडी इज कैरिंग अ डिफरेंट एनर्जी सर्कल। तो इनके प्रभाव से बचने के लिए हमें कहां होना पड़ेगा? करो करो, राइट हैंड रखो, इनके प्रभाव से बचने, क्योंकि एक को थोड़ी मिलना, ये गए एक घंटे के बाद एक और आ रहा है, एक घंटे के बाद एक और आ रहा है, तो हम इनके प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राइट हैंड को कहां होना पड़ेगा? कितना ऊपर? कितना ऊपर? कितना ऊपर? कितना ऊपर? कितना ऊपर? कितना ऊपर? अब दो बेनिफिट होंगे, पकड़ के रखना, दो बेनिफिट होंगे। जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को ऊपर उठाया, ये वाली एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती, क्योंकि एनर्जी डजंट फ्लो फ्रॉम लोअर टू हायर। लेकिन आपकी एनर्जी क्या कर देगी? आपकी एनर्जी इनको मिलेगी और इनकी मन की स्थिति बेटर होने लग जाएगी। इतनी बार आपसे मिलेंगे, इतनी बार आपसे बातें करेंगे, और जैसे ही आपके कैबिन से बाहर आएंगे तो कहेंगे बस इनसे तो ना मिलकर ही मन ठीक हो जाता है। अभी केस नहीं ठीक हुआ उसको तो पता नहीं कितना टाइम लगना है, लेकिन आपको मिलके मन ठीक होना चाहिए, आपको मिलके एनर्जाइज्ड फील होना चाहिए, आपको मिलके शक्ति मिल जानी चाहिए। इवन अगर मुझे पता हो कि मेरे केस में कुछ नहीं आए, नो के नहीं ठीक हो सकता ये, लेकिन आपसे मिलकर मुझे पावर मिल जाएगी अगर आप अपना ध्यान रखकर अपने को यहां रखेंगे। जैसे यहां पर आकर आपको सुकून मिल रहा है, आपने तो कोई मेडिटेशन नहीं किया अभी तक, अभी तो सीखा भी नहीं है, लेकिन किसी और ने किया, उससे वायुमंडल बना, आप आकर बैठे, आपको अच्छा फील होना शुरू हो गया। इसी तरह आप अपनी लाइफ में करेंगे, आपके जहां आप बैठते हैं वहां का वायुमंडल चेंज होगा, वो आपको मिलने आएंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया होगा मेडिटेशन, लेकिन आपके कमरे में आपके सामने बैठकर उनको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा, जैसे आपको यहां अच्छा फील होना शुरू हो रहा है। क्या ये इतनी बड़ी सेवा है या नहीं है? ये सेवा है या नहीं है? किसी को प्यास लगी हो उसको पानी पिलाना पुण्य होता है। कोई कमजोर मन से आया है, हताश आया है, दुख दर्द में आया है, अपना सब कुछ खोकर आया है और आगे के लिए उसको कोई होप नहीं दिखाई दे रही है, उसको शक्ति देना कितना बड़ा पुण्य है। है पुण्य या नहीं है पुण्य? ये पुण्य है। तो जब आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए खुद को एनर्जाइज करेंगे, वो आपको बेनिफिट करेगा। आप रोज शाम को इस एनर्जी में घर आएंगे, आपका घर का वायुमंडल प्रोटेक्टेड रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा पुण्य है जो आपसे मिलने आएंगे, उनको आपके आभा मंडल और आपके कमरे के वायुमंडल में बैठ कर अच्छा फील होना शुरू होना चाहिए। ये हमारा लक्ष्य है। आप रेडी ये लक्ष्य रखने के लिए? तो आपने 10 मिनट निकाले अपने लिए, लेकिन वो आपका 10 मिनट्स का इन्वेस्टमेंट सिर्फ आपको बेनिफिट नहीं कर रहा, वो कितनों को बेनिफिट कर रहा है। अब प्रायोरिटी पे आ जाएगा 10 मिनट्स निकालना? यस, प्रायोरिटी पे आ जाएगा 10 मिनट्स निकालना। तो जो हम 3 दिन यहां मेडिटेशन सीखेंगे, हम जाने के बाद रोज सुबह 10 मिनट्स करेंगे। लेकिन क्योंकि आपके रूम में बहुत सारी थॉट्स प्रोसेस आने वाली हैं, अगर मैं कंप्यूटर के साथ काम कर रही हूं ना अपने कमरे में, तो मेरे कमरे की एनर्जी को कोई दूषित नहीं करता है। लेकिन आपके कमरे में बहुत लोग आने हैं, बहुत बातें होनी है आपके कमरे में। सिर्फ लोग नहीं आने, बातें बहुत होनी है। तो आपको क्या करना है, हर एक घंटे के बाद रूम की एनर्जी को एयर फ्रेशनर के साथ साफ करना है। कैसे, कौन सा एयर फ्रेशनर करना है? बस ऐसे सीधा बैठना है, ब्रिक्यूटी में देखना, मैं आत्मा, बस एक थॉट क्रिएट करना, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, एनर्जी चेंज होने लग जाएगी। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, एनर्जी चेंज होने लग जाएगी। और फिर अपने कमरे के लिए एक संकल्प करना, इस कमरे में जो आकर बैठता है उसके मन को सुकून और शक्ति मिल जाती है। आप उस कमरे में वो वाइब्रेशन रेडिएट कर दें। कर सकते हैं? इजी? यस, बोलेंगे एक बार इकट्ठे मिलकर। सिर्फ रिपीट नहीं करना है, उस स्थिति में बैठकर करना है। माइंड साइलेंट, रिकुटी के बीच में आत्मा। अब जेंटली आप रिपीट करेंगे शब्दों में, मैं शक्तिशाली शांत स्वरूप आत्मा हूं। बोल के करें, शब्दों में करते हैं, याद हो जाना चाहिए यार। मैं शक्तिशाली शांत स्वरूप आत्मा। जैसे आपने ये थॉट क्रिएट की ना, ये एनर्जी रेडिएट होने लग जाती है बाहर। दूसरा, मैं सबको शक्ति देने वाली आत्मा हूं। और तीसरा, इस कमरे में हर एक जो आता है बोले शांति और शक्ति की अनुभूति लेकर जाता है। 3 संकल्प रिपीट कर सकते हैं हर एक घंटे के बाद? कर सकते हैं हर एक घंटे के बाद? ये जैसे हम बीच बीच में रुक के पानी पीते हैं ना, तो बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी मिल जाती है, रिफ्रेश हो जाता है। अगर हम पानी पिए बिना काम करते रहे, टाइम नहीं है पानी पीने के लिए, तो हमारी एनर्जी क्या होने लग जाएगी? डाउन हो जाएगी। इसी तरह कोई आपसे मिलकर आए और बाहर जाए, अभी इमीडिएटली तो नेक्स्ट नहीं आएगा। अगर इमीडिएटली भी किसी ने नेक्स्ट आना है, तो बीच में 30 सेकेंड्स तो है ही ना, एक के जाते और दूसरे के आते। आपको ये करना है उस टाइम। ये करने से क्या होगा, आपकी एनर्जी ऑफ द रूम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होती जाएगी? प्योरिफाई होती जाएगी। एक चौथा संकल्प आपको हर बार करना है कि जब हम लोगों से मिलते हैं ना, तो उनकी एनर्जी फील्ड यहां है, हमारी एनर्जी फील्ड यहां है। वो ऑरा एंड ऑरा इंटरैक्ट तो करता ही है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम एक संकल्प करेंगे कि परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। ड्रॉ करेंगे, परमात्मा की शक्तियां मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। मतलब मैंने क्या किया, अपनी बॉडी के चारों तरफ एक हाई एनर्जी सर्कल बना दिया है। ठीक है, ऐसे बनाना पूरी बॉडी। हमारा ऑरा पूरा ऐसे होता है, हमारी एनर्जी फील हमारी बॉडी की शेप की होती है, क्योंकि यहां की जो एनर्जी है ना, वो पूरी बॉडी में जाती है। तो अपने चारों तरफ, आपको याद होगा या अभी भी करते होंगे या पहले तो करते थे, कि कुछ हो जाता था ना, तो घर के बड़े कहते थे इधर आओ, आपकी नजर उतारते, ऐसे 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 करते थे ना। तो कैसे नजर उतारते, मिर्ची लेते थे और क्या करते थे, आपके चारों तरफ ऐसे। मतलब क्या, कोई एक नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव मतलब किसी का दर्द, किसी का गुस्सा, नेगेटिव मतलब नेगेटिव वैसे वाला नेगेटिव नहीं, जस्ट लोअर एनर्जी। तो फिर वो मिर्ची को ले रहे हैं कि मिर्ची एनर्जी अब्सॉर्ब करती होगी शायद, तो इसीलिए ऐसे ऐसे करके कहते अब इसको क्या करो, फेंक दो, हो गया क्लीन। तो क्लीन करना बहुत इजी है, बहुत इजी है। लेकिन अगर हम ये सारा दिन करेंगे ना बार बार, तो क्लीन नहीं करना पड़ेगा, हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। तो जैसे हमने एक हायर एनर्जी सर्कल अपने चारों तरफ बना लिया, तो कोई भी लोअर एनर्जी हायर एनर्जी के अंदर नहीं आ सकती, आपसे ये हायर एनर्जी सबको मिलने शुरू हो जाएगी। इजी है ये करना? यस, इजी है ये करना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप राइट हैंड को यहां लेकर जाने के लिए, रोज सुबह मेडिटेशन, एंड सेकेंड एवरी आवर या एवरी एक इंटरेक्शन के बाद, जब आपको बीच में पॉज मिलता है आधे मिनट का भी, आपको आधे मिनट, जैसे देखो जो लोग कंप्यूटर पे सारा दिन काम करते हैं, उनका वो वाला ऑब्स्टिकल है कि उनकी गर्दन स्टिफ हो जाती है, उनकी बैक स्टिफ हो जाती है, सारा दिन टाइप करने से ये हाथों में दर्द होने लगता है, वो उस प्रोफेशन का चैलेंज है। तो डॉक्टर उनको क्या बोलते हैं, हर आधे घंटे के बाद नेक को ऐसा मूव कर लो, हाथ को ऐसा मूव कर लो, थोड़ा सा उठ जाओ। हार्ट का प्रॉब्लम है, डॉक्टर कहता है हर आधे घंटे के बाद एक मिनट वॉक करके आ जाओ। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें बहुत बड़े बड़े रिजल्ट क्रिएट करती है। तो ये चीज बहुत सिंपल है कि हर एक दो घंटे के बाद मैं शक्तिशाली, मैं शांत, मैं सबको शक्ति देने वाली। अब क्यों हम कह रहे हैं मैं सबको शक्ति देने वाली, तो हम अपने आप को कौन सी साइड पर रख रहे हैं, हम अपने आप को कौन सी साइड पर रख रहे हैं? जैसे ही मैंने कहा मैं सबको शक्ति देने वाली, मतलब लेना फिनिश हो जाएगा, अब्सॉर्ब उनकी एनर्जी करना फिनिश हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपने आप को कहा मैं गिवर साइड पर हूं, मैं गिवर साइड पर हूं। तो मैं सबको शक्ति देने वाली, और फिर उन सब के लिए एक शुभ संकल्प कि जब वो इस कमरे में आएंगे तो वो शांति, शक्ति और सुकून अनुभव करके जाएंगे। तो आपका कमरा क्या बन जाएगा फिर, आपका कमरा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? देखो जब हम मंदिर जाते हैं, हम देवी देवताओं की मूर्ति के पास खड़े होते हैं, हम हाथ जोड़ के कहते हैं कि भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा वो काम कर दो, जरूरी नहीं है मेरे सारे काम हो जाते हैं, लेकिन मंदिर जाकर मूर्ति के सामने खड़े होकर हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है? सुकून मिलता है, शक्ति मिलती है, वो प्योरिटी फील होती है, और वो सुकून, प्योरिटी और शक्ति हमें अपना काम करने की, चैलेंज क्रॉस करने की शक्ति देती है। तो आपको लोगों को सिर्फ सल्यूशन नहीं देना है, आपको लोगों को पावर देनी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या हम ऐड कर सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में? ये हमारा प्रोफेशन है और ये प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जितना हम औरों को देते रहेंगे उतना हमारी एनर्जी फील्ड क्या होती जाएगी। देवी देवताओं के हाथ कैसे होते आकर कर, देवी देवताओं के हाथ कैसे होते हैं, धर्म स्थापकों के हाथ कैसे होते हैं, कोई भी प्रॉफिट की फोटो देखो, हाथ कैसे है? देने वाला है। हमें भी क्या बनना है? देने वाला बनना है। तो आप विजुअलाइज करो, ये कमरा एक मंदिर है, मैं इस मंदिर का हाँ बोलो अच्छे से, मैं मंदिर का कौन हूं? हाँ, देवता मतलब जो देने वाला है। आज भी दुनिया में कोई अच्छे संस्कार होते हैं, सबको देता कहते हैं, ये तो बिल्कुल देवता है, देवता मतलब देने वाला, देने वाला है। आप वैसे ही सबको देने वाले हैं, आप सबकी प्रॉब्लम्स का समाधान करने वाले हैं। ये करने से एक और चीज बहुत अच्छी हो जाती है, भले ये हमारा प्रोफेशन है और प्रोफेशन कमाने के लिए होता है ऑब्वियसली, लेकिन आप कमाएंगे ही, लेकिन इंटेंशन आप हमेशा रखना कि मैं उनके फायदे के लिए यहां बैठा हूं इस कुर्सी पर, अपने फायदे के लिए नहीं। ये आपकी एनर्जी को बहुत ऊपर लेकर जाएगा। ऐसे नहीं जीना है लाइफ में, ऐसे नहीं जीना है लाइफ में। ऐसे जिएंगे तो सब एनर्जीज भी ऐसे आएंगे। कैसे जीना है? ऐसे जीना है, मैं सबको देने के लिए हूं, मैं सबके फायदे के लिए हूं। जब हम दूसरों का फायदा करते हैं, हमारा फायदा अपने आप उसमें समाया हुआ है, हमें अपने फायदे की चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें दूसरों के फायदे को अपनी प्रायोरिटी बनाना, जीवन का लक्ष्य बनाना है। तो ये हमारे दो होमवर्क हो गए, एक सुबह, एक दिन में बीच बीच में, और क्या बनाना था अपने चारों तरफ, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच। अब हमें अपनी स्थिति को कहां लेकर जाना है, कहां लेकर जाना है? ऊपर। ये सारा दिन में ऊपर कैसे जाएगी, सिचुएशंस को हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये सिचुएशन के हिसाब से नहीं, हमारे मन की स्थिति पर डिपेंड करेगा। किस किस ने अपने आप को फर्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा लो स्कोर दिया था कि सिचुएशन का मुझ पर असर पड़ जाता है। ओके, ये हमारी गलती नहीं है, हमें बचपन से कंडीशन किया गया था इस तरह से। ऐसा हुआ ना तो गुस्सा तो, रिपीट करें ना, ऐसा हुआ तो गुस्सा तो आना ही था, प्रॉब्लम आई है चिंता तो होनी है, उसने ऐसा व्यवहार किया बुरा तो लगना ही है। ये वोकैबुलरी कंडीशनड हो गई और ये वोकैबुलरी ने मेरे लिए ये पक्का कर दिया कि जो यहां हो रहा है उसका इफेक्ट यहां हो रहा है। राइट है बात, राइट है। तो हमें गुस्सा कौन दिलाता है, हमें गुस्सा कौन दिलाता है, वो मैं दोनों, कौन सा ऑप्शन, दे मी बोथ, पक्का आपको दूसरा कोई गुस्सा नहीं दिलाता है? कौन कौन पक्का है कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिलाता, मैं खुद खुद को चूज करता हूं गुस्सा करना, दूसरे का हाथ नहीं देखना, खुद को डिसाइड करो। हाँ ओके, अगर मैं खुद चूज करता हूं गुस्सा करना फिर तो मुझे वैसे ही बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसका नुकसान हो रहा है, किसका नुकसान हो रहा है? आपको पता है इस साल में 2025 में कितने लोगों ने अचानक शरीर छोड़ा है, यंग एज में, बॉडी की एज कम, और डॉक्टर्स ने पैनल डिस्कशन में न्यूज चैनल पे एक ही चीज बोली, स्ट्रेस। स्ट्रेस मतलब क्या, लोअर एनर्जी, क्योंकि उसका असर यहां पड़ रहा है। तो अगली बार याद रखना गलती उसकी, और असर कहां पड़ रहा है, यहां नहीं भी याद रहे तो ये याद रखो यहां असर पड़ रहा है। कहां असर पड़ रहा है, रख लो हाथ, कहां असर पड़ रहा है, हाँ। तो इसके लिए, इसके लिए हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है उस सिचुएशन को, कैसे ये नहीं मतलब हाँ ठीक है आपको जो करना करो, नहीं, हम वही बात बोलेंगे लेकिन शब्द हायर एनर्जी के होने चाहिए, क्योंकि शब्द उसके शरीर पर नहीं मेरे शरीर पर असर डालते हैं। सामने वाले के पास चॉइस है उसको क्या फील करना है आपकी डांट सुनने के बाद, आपके पास चॉइस नहीं है, आपने जो उसको डांटा वो किसको मिलने वाला है, हाँ जी रिपीट करते हैं, मैंने जो उनको डांटा वो किसको मिलने वाला है, मुझे। हमें लगा हम उनको डांट रहे थे, वो किसके मन पर असर कर रहा है, मेरे। वो किसके तन पर असर कर रहा है, मेरे। वो किसके घर पर असर कर रहा है, मेरे। गलती दूसरे की, नुकसान। वापस जाएंगे, तीसरा होमवर्क, अपने कमरे में, अपने कैबिन में, अपने आसपास ही कहीं लिख दो, दिस इज अ नो एंगर जोन, कर ले, कर ले। इतना साइलेंट क्यों हो गए, दूसरा भी गुस्सा नहीं कर सकेगा जो आएगा आपके कमरे में, क्योंकि वो कमरे में नो एंगर जोन है, वो नो स्मोकिंग जोन लिखा, कितना बच गए हम लोग, अभी हमारे आसपास नहीं कर सकते ना। अब एक अलग कमरा बना होता है एयरपोर्ट पे, हर जगह जाओ उधर जाओ, खुद की सेहत को खराब करो और सारे जो खड़े हैं वहां उनके साथ करो जो करना है, ऐसे ये कमरा हो जाना चाहिए, जाओ उसमें जाओ गुस्सा करो वापस आ जाओ। वायुमंडल दूषित होता है मन की, ये सिर्फ एक डिसीशन होता है, आप सिर्फ डिसीशन लेंगे ना तो 10 में से 5 बार तो आप नहीं करेंगे, ये पक्की बात है। और जब आप हर घंटे बार बार रिपीट करेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं और आत्मा को देखेंगे, तो अहंकार कम होता जाता है और आत्मा के निज संस्कार क्या होते जाते हैं, ऊपर आते हैं। आपको याद रखना है अगर मैंने गुस्सा किया तो एनर्जी फील्ड कहां गिरती है, नीचे। कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम था, उसमें किसी के पास एक ऐसी मशीन होती है जिससे ऑरा को चेक कर सकते हैं, तो उन्होंने ऑडियंस में से ऐसे किसी को बुलाया और उनका ऑरा चेक किया, तो बहुत अच्छा ऑरा था उस व्यक्ति का, तो मतलब ऐसे 15 फीट उसका ऑरा जा रहा था, विच इज अ वेरी हैवी नाइस बिग ऑरा। फिर उस व्यक्ति को कहा गया आंख बंद करो, लास्ट टाइम आपने जब गुस्सा किया था उसको याद करो, सिर्फ गुस्सा नहीं करना है, सिर्फ याद करना है जब आपने लास्ट टाइम गुस्सा किया था। उसने 1 मिनट आंख बंद किया, उसके बाद उसको टेस्ट किया तो उसका जो 15 फीट का औरत था वो 3 फीट पे आके ऐसे कोलैप्स हो, जैसे बलून कैसे हो जाता ना ऐसा। तो एनर्जी फील्ड ऐसी है, ये बहुत जल्दी ऐसी भी हो जाती है और ये बहुत जल्दी ऐसे भी हो जाती है। इसका ध्यान किसको रखना है? हमें। तो एक छोटी सी लिस्ट बना लेते हैं, कौन से संस्कार मुझे नीचे लेकर आते हैं, मतलब मेरे राइट हैंड को क्या करते हैं, नीचे लेकर आते हैं। ये मेरे प्रोफेशन के लिए नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड है, वो मेरे लिए हानिकारक है। तो फर्स्ट इज एंगर, अग्रेशन, वो ही बात को स्थिरता से बोले। शब्द भी वही हो सकते हैं लेकिन लहजा, अपने ऊपर संयम खोके नहीं, अपने ऊपर संयम रखते हुए। परमात्मा हमें सिखाते हैं कि सामने वाले ने गलती की और आपने कहा उसने गलती की इसलिए हमने गुस्सा किया, तो परमात्मा कहते हैं उसने भी गलती की, गुस्सा करके आपने भी गलती की, तो एक गलत दूसरे गलत को ठीक नहीं कर सकेगा। सो टू करेक्ट अ रॉन्ग वी हैव टू स्टैंड ऑन द राइट साइड। ठीक है, तो नो एंगर जोन जाके लिख देंगे, कमरे में नहीं भी लिख सके अपने कोई स्लिप पे तो बना सकते हैं अपने लिए रिमाइंडर, आई एम अ पीसफुल सोल एंड माय रूम इज अ नो एंगर जोन। उस कमरे को दूषित नहीं करना। आपको याद है ना वो कमरा क्या है, वो कमरा क्या है, वो कमरा क्या है, वो कमरा मंदिर है और उस कुर्सी पे बैठा हुआ कौन है? देवता। देवता के सामने तो सब तरह के लोग आते हैं लेकिन देवता हर एक को क्या करता है, बस ये करते जाना है, सबको ब्लेसिंग्स दो। इस समय लोगों की शक्तियां कम हुई हुई है, समझ है उनको क्या राइट है क्या रॉन्ग है लेकिन शक्ति कम हुई हुई है, तो उनको क्या देना है, ब्लेसिंग देना है। उनकी गलती की एनर्जी को कंज्यूम नहीं करना है, अपनी शक्ति की एनर्जी की उनको ब्लेसिंग देके उनकी पावर को बढ़ाना है। जैसे ही हम रिएक्ट करके गुस्सा कर देते हैं तब तक तो हम उनकी एनर्जी फील्ड के साथ बहुत ज्यादा एंटेंगल हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको ऊपर लेकर जाना है। दूसरा, दूसरे की गलती का चिंतन करना, दूसरे की कमजोरी का चिंतन करना और फिर उसको शब्दों में भी ले आना, मतलब क्रिटिसिज्म, ये हमारी एनर्जी को डिप्लीट करता है। आपको अपने प्रोफेशन के लिए, आप कोर्ट में किसी के लिए कर रहे हैं तो आपको दूसरे को तो क्रिटिसाइज ही करना है फुल टाइम, वो प्रोफेशनल है लेकिन पर्सनल लाइफ में ये ऐसा है वो ऐसा है, इसको ऐसे नहीं, वो गलत है वो बुरा है, ये नहीं करें। प्रोफेशनली बहुत करना पड़ जाता है, पर्सनल क्रिटिसिज्म, निंदा, दूसरे की वीकनेस को डिस्कस करना मन में या शब्दों में किसी के साथ, वो दूसरे की वीकनेस को हम कंज्यूम कर लेते हैं जब हम उसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो वीकनेस फिर उधर नहीं, वो मेरे मन चित पर आ जाती है। ये पौधा यहां है, यहां ही रहने देते हैं इसको, जैसे ही मैंने इसके बारे में सोचना शुरू किया ये यहां आ जाता है। तो फिर हम यहां पर बहुत एक प्यारी सी चीज सीखते हैं, सामने वाला कैसा भी है अगर आपको उनके बारे में सोचना है तो आपकी हर सोच उनके बारे में कैसी होनी चाहिए, हाँ बोले कैसी होनी चाहिए, बहुत अच्छी। उन्होंने गलती भी की हो आप उनके लिए एक अच्छी थॉट क्रिएट करके उनके लिए क्या बन जाएंगे, देवता। ये किसके लिए हम कर रहे हैं, पहले हम खुद की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं लेकिन वो प्रोटेक्शन उनकी पावर बन जाती है। तीसरा, चिंता मतलब रिपीटेड थॉट्स। हमें अपने मन का मालिक बनने के लिए बचपन से सीखा था, मन जीते जग जीते हैं और मन से हारे तो इसीलिए मन को जीतने के लिए संकल्पों को जीतना पड़ता है। तो मन कहेगा कैसे होगा, क्या होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, नहीं होगा तो कैसे होगा, नहीं हुआ तो क्या हुआ, वो कमेंट्री बिना कॉमा फुल स्टॉप के चलती है। और इसीलिए कहा जाता है चिंता चिता समान है, वो जलती रहती है अंदर। वरी बहुत बड़ा डिप्लीटर है। तो आज हम एक अलग वोकैबुलरी सीखेंगे, आप अपने डायरी में पेज पे लिख दीजिए, संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सिद्धि होती है, ये एक लॉ है। आपके सारे जो लॉज हैं वो लॉ ऑफ द कंट्री है, ये जो लॉ है ये एक स्पिरिचुअल लॉ है, ये हर एक पर वर्क करता है और हमेशा वर्क करता है।
और वो लॉ क्या कहता है, संकल्प से सिद्धि होती है। जो आप सोचेंगे और कई बार सोचेंगे वो क्या हो जाएगा, वो सिद्ध हो जाएगा, इट विल बिकम अ रियलिटी। अब इसका मतलब क्या है, जो आप बनना नहीं चाहते वो कभी बोलना नहीं, जो आप चाहते नहीं आपकी लाइफ में हो वो कभी सोचना नहीं, और जो आप चाहते नहीं कि दूसरा बने वो भी कभी बोलना नहीं, क्योंकि जो आप बोलेंगे और सोचेंगे वो तथास्तु हो जाता है, क्योंकि संकल्प से सिद्धि एक लॉ है। रिपीट करें, जो हम बनना नहीं चाहते, बोले जो हम बनना नहीं चाहते वो सोचना नहीं, तो फिर क्या सोचना, सिर्फ जो बनना चाहते हैं, जो हम चाहते नहीं जीवन में हो उसको भी सोचना नहीं, तो क्या सोचना है, सिर्फ जो हम चाहते हैं कि हो, और हम जो चाहते नहीं कि दूसरा बने तो वो भी हमें शब्द उसके लिए यूज करने नहीं। तो संकल्प से सिद्धि मतलब मेरी हर थॉट, ये एक वोकैबुलरी है, ये एक भाषा है, और थोड़े दिन की प्रैक्टिस के बाद ये हमारी भाषा बन जाती है सोचने की, ठीक है। इस भाषा में अभी हमने स्टार्टिंग में मेडिटेशन में क्या किया, हमने कहा आई एम पावरफुल, मैं शक्तिशाली हूं, अभी हम हैं नहीं, लेकिन लॉ ये है कि अगर आप उसको कहेंगे बार बार तो आप बनना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो आपका संकल्प बन जाएगा और रिपीटेड संकल्प सिद्ध होने लग जाएगा। दूसरा संकल्प हमने कहा, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, अभी हम हैं नहीं। तीसरा हमने कहा, मैं सबको शक्ति देने वाली आत्मा हूं, अभी हम दे रहे नहीं है, लेकिन यही वोकैबुलरी है कि जो हम बनना चाहते हैं वो हमें कहना है, बार बार कहते रहना है, थोड़े दिन के बाद उसको अपनी भाषा बना लेना है, और थोड़े दिन के बाद ऐसा बन जाना है, थोड़े सालों के बाद नहीं, थोड़े दिन के बाद। रेडी करने के लिए, अब सेम चीज हमें किसके लिए अप्लाई करनी है, दूसरे के लिए। कोर्ट के अंदर अलग, वो आपका रोल है, पर्सनल लाइफ के अंदर दूसरे को ऐसे बन के जिए, दूसरे ने कोई गलती की आप उसके लिए एक थॉट रिपीट करें, शक्तिशाली आत्मा हर कर्म एक्यूरेट करते हैं, बस आप इतना सा बोले आगे बढ़े। पहले यहां शांति चलेगी क्योंकि आपने एक अच्छी थॉट क्रिएट कर दी। दूसरा ऑप्शन क्या है, ऐसे करते हैं, जब देखो ये ऐसे करते हैं, ये है ही ऐसे, कॉमेंट्री चलेगी अंदर। हम बात पौधे के बारे में कर रहे हैं, एक मिनट उंगली रखो, हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, रखे उंगली इधर, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पौधे के बारे में। स्थिति कहां बन रही है, यहां बन रही है, बात इसके बारे में कर रहे हैं, स्थिति कहां बन रही है, यहां बन रही है, सेहत कहां बन रही है, यहां बन रही है, पौधा तो वही है लेकिन स्थिति और सेहत कैसी बनानी है वो चॉइस मेरी है। तो संकल्प से सिद्धि हमें ये सिखाती है कि पौधा अगर मुरझाया हुआ भी है तो कहो बहुत खूबसूरत है, बोल सकते हैं। झूठी तो बोलना आसान है, वैसे तो आसान है, झूठ बोलो वेरी इजी। आप सिर्फ करके देखना ना, अभी आपने कैसे बोला शक्तिशाली आत्मा, पीसफुल आत्मा, बोला ना, इजी था। प्रैक्टिस, लॉयर बनना ज्यादा आसान है या शांत आत्मा बनना ज्यादा आसान है, कौन सा ज्यादा आसान है? बस तो सारे मुश्किल काम तो कर लिए लाइफ के, अब तो हम आसान काम करने आए हैं यहां। मन जीते जग जीते, सबसे पहला जग है हमारा शरीर, ये जो सारी हमारी वोकैबुलरी चल रही है ना, रनिंग कमेंट्री अंदर, उसी का असर इस पर पड़ रहा है, तो अपने शरीर के लिए करना शुरू करें। तो इसी तरह दूसरे के लिए भी हम यही शब्द बोलते हैं। अगर हम इस पौधे को यहां रखें ना, क्यों हम कहते हैं कि जब प्रार्थना करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं तो प्रकृति भी बदल जाती है। आप जब नीचे जाएंगे चौथे दिन पर, एक कैंपस है नीचे, उसका नाम है तपोवन, वहां योगिक खेती की जाती है। योगिक खेती मतलब जब अनाज को बोने से पहले पहले उसके साथ मेडिटेशन किया जाता है, तो अनाज की जो ग्रेन है उसकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। फिर जब वो उग रहा है पौधा, दिन में दो बार वहां मेडिटेशन होता है, पानी जब डाला जा रहा है तब मेडिटेशन होता है, और जो प्रोड्यूस होता है वो मैजिक है। फिर उसका कलर, उसका साइज, उसका सब कुछ डिफरेंट है। आप सबने देखा होगा, अगर आपका अपना गार्डन है या आप कोई फूल या कोई सब्जी उगाते हैं, तो आपको फर्क लगता है मंडी से आई हुई सब्जी में और खुद की उगाई हुई सब्जी में फर्क लगता है? किस किस को ये एक्सपीरियंस है? क्यों ऐसा? बहुत फर्क होता है। क्यों होता है? वो तो उल्टा ज्यादा अच्छा होना चाहिए, वो तो किसी प्रोफेशनल ने उगाई है, हम तो अपने छुटपुट तरीके से उगा लेते हैं। क्यों फर्क होता है? क्योंकि जब आप उगा रहे हैं उसको, आपकी एनर्जी, आपका वाइब्रेशन वो पौधे को चेंज कर देता है। अगर हमारी वाइब्रेशन एक पौधे को चेंज कर सकती है, तो हमारी एनर्जी शरीर को चेंज कर सकती है, हमारी एनर्जी दूसरे को चेंज कर सकती है, हमारी एनर्जी वायुमंडल को चेंज कर सकती है। जहां आप बैठे हैं ना, ये कैंपस अच्छा है ना, ये कैंपस बाहर घूमते हुए अच्छा लग रहा था ना। 30 साल पहले ये एक बंजर जमीन था, बैरन लैंड, डिक्लेयर्ड बैरन लैंड, कि यहां कुछ नहीं उग सकता, कुछ नहीं उग सकता, सिर्फ वैसे काली काली पहाड़ियां थी यहां सारी, कुछ नहीं उग सकता। तो जो दादी जी हैं, जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थी उस समय, वो दूसरे कैंपस में थी, तो एक दूध वाला भैया ने आकर कहा, दादी वो जमीन मिल रही है बहुत सस्ते में, ले लो। तो सबने बोला, वो जमीन का क्या करेंगे, वो तो बंजर जमीन है, वहां कुछ नहीं हो सकता। तो दादी ने मेडिटेशन रूम में बैठकर परमात्मा से कनेक्ट किया, कहा ये मिल रहा है तो क्या करना है, इसको टचिंग आई, इसको ले लो। बंजर जमीन ली और कुछ सालों में उसको राजस्थान से अवार्ड मिल गया, पैराडाइज ऑफ राजस्थान। इसमें अगर आप देखेंगे, जब आप चल रहे हैं, इसकी टेरेन को भी डिस्टर्ब नहीं किया गया है, जहां हिल है तो ऐसे ही चलेंगे आप, इसको फ्लैट नहीं किया। कौन कौन विष्णुपुरी बिल्डिंग में रह रहा है? अगर आप विष्णुपुरी बिल्डिंग में देंगे ना, आपको दिखेगा कहीं ऐसे ऊपर है कहीं नीचे है, क्योंकि जैसी टेरेन है उसी में कंस्ट्रक्शन किया गया है सारा। आज इतनी प्रकृति है यहां पर, ये बंजर जमीन कैसे हो सकती थी? लेकिन ये बंजर जमीन थी, लेकिन इस पर किस चीज का फर्क पड़ा, किस चीज का प्रभाव आया? वाइब्रेशन, डेली मेडिटेशन। तो इसीलिए जो है वो नहीं बोलना, जो बनाना चाहते हैं वो बोलना, और बोल बोल के उसको वैसा बना देना। अपने बच्चों के लिए कैसा बोलना, अपने बच्चों के लिए कैसा बोलना, हाँ अब बताओ क्या बनाना चाहते हो उनको? अच्छा नहीं, अच्छे ऑलरेडी है, और बताओ, शांत आत्मा। और आज रात को ना डायरी में लिखना क्या बनाना चाहते हैं उनको, तो पहले लिखना स्पेसिफिकेशंस क्या बनाना चाहते हैं उनको, उसके बाद वो थॉट बनाना, उनका नाम लिखकर, वो फिल इन द ब्लैंक नाम, शक्तिशाली आत्मा है, अपनी क्षमता से ज्यादा पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनका हर निर्णय राइट है, उनका हर कर्म श्रेष्ठ है, इसको कहते हैं ब्लेसिंग्स की वोकैबुलरी। और जब आप अपनी वोकैबुलरी को ही दुआएं बना दो, तो दुआएं असंभव को भी क्या करती हैं, संभव करती हैं। तो फर्स्ट स्टेप लिखना है कि मेरा संकल्प का क्रिएटर कौन है, हु क्रिएट्स माय थॉट्स। तो आज से फर्स्ट होमवर्क कभी भी नहीं बोलना उसकी वजह से ऐसा, उस बात की वजह से ऐसा, नहीं, जो है वो है, लेकिन यहां जो चल रहा है, यहां की स्क्रिप्ट कौन लिखता है? मैं। ये याद रखना है, मेरी हर थॉट का क्रिएटर मैं, इसलिए मेरे गुस्से का क्रिएटर मैं, मेरे चिंता का क्रिएटर मैं, मेरी खुशी का भी क्रिएटर मैं। क्या कोई हमें हर्ट कर सकता है? आप में से कोई हर्ट हुआ है कभी? कौन कौन हर्ट हुआ है? अच्छा, एक बार या कई बार? कई बार। नाम याद है उनके जिन्होंने हर्ट किया था? हाँ, अच्छा देखो इतना मेमोरी कितनी, हाँ ऑफकोर्स याद है, भूला नहीं, तो फिर तो हमारा स्कोर लो हो जाएगा वो फोर्थ नंबर वाले क्वेश्चन के अंदर। लोग हमारे साथ गलत कर सकते हैं, लोग हमें धोखा दे सकते हैं, लोग हमें चीट भी कर सकते हैं, लोग हमें बीट भी कर सकते हैं, फिजिकली हिट भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई यहां पर घुसकर मेरी सोच में दर्द ला सकता है? यस या नो? नहीं, सोच के ध्यान से करो। सामने वाला चिल्ला सकता है, चीख सकता है, अपशब्द बोल सकता है, चार लोगों के सामने बोल सकता है, आपके पीठ पीछे कुछ आपके साथ गलत भी कर सकता है, आपका बहुत सारा नुकसान भी करा सकता है। वो जिस पर आपने आंख बंद करके विश्वास किया, वो आपको धोखा भी दे सकता है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन क्या वो यहां पर घुस कर आपको दर्द दे सकते हैं? एक सेकंड खड़े हो जाइएगा प्लीज। अगर आप भाई साहब, नहीं नहीं आपने भाई साहब, नहीं नहीं आपको भाई साहब ने कहा अगर हम परमिट करें तो। कौन कौन अग्री करता है इस बात से, अगर हम परमिट करें तो? अच्छा, अभी परमिट करें, आप मुझे परमिट करें, आपके माइंड में कैसे घुसना? हाँ, किसको परमिट करेंगे? मैं तो कर रही हूं जो गलत कर रही हूं, वो तो आई एम डूइंग। क्या मैं आपके माइंड में घुसकर पेन क्रिएट कर सकती हूं आपके लिए? अलाउ व्हाट? अलाउ मी टू एंटर एंड क्रिएट द पेन? योर रिस्पॉन्स ना, कैन आई क्रिएट द पेन फॉर यू? कैन आई क्रिएट द पेन फॉर यू? खड़े हो जाए, एक मिनट खड़े रहिएगा प्लीज। हाँ, कैसे? नहीं, क्वेश्चन ठीक से सुनो। क्या मैं आपके माइंड में घुसकर आपके वो पेनफुल थॉट्स क्रिएट कर सकती हूं आपके लिए? आपके मन में घुस के आपके पेनफुल थॉट्स मैं क्रिएट कर सकती हूं ना? सामने वाला मैं हूं इस टाइम, ओके? मैं आपके सबके सामने आपके लिए बहुत कुछ बोल रही हूं, यह है मेरी पावर। हर एक इसको ध्यान से कर ले, वंस इन अ लाइफ, फर्स्ट एंड लास्ट टाइम, फिक्स इट हियर एंड देन पूरी जीवन के लिए सेट। दूसरा क्या कर सकता है और दूसरा क्या नहीं कर सकता है? मैं यहां से सबके सामने बहुत आपके साथ गलत बोल सकती हूं, यह मैं कर सकती हूं, रोज भी कर सकती हूं। मैं आपके प्रोफेशनल कलीग हूं, मैं फैमिली मेंबर हूं, मैं रोज कर सकती हूं। क्या उसके बाद मैं आपके मन में घुसकर दर्द वाली थॉट्स क्रिएट कर सकती हूं आपके लिए? फिर ठीक है, बहुत अच्छा, आंसर चेंज हो गया। जैसे ये आंसर चेंज हुआ, पावर किसके पास आ गई? सारे आप दिख रहे, पावर किसके पास चले गई है सारी? मेरी पावर क्या थी? रॉन्ग बिहेव करने की। आपकी पावर क्या थी? इस रॉन्ग बिहेवियर के बाद आपने कैसे सोचना है, वो चॉइस किसकी है? आपकी है। हमने वो चॉइस को छोड़ दिया और हमने कहा उन्होंने ऐसा बोला तो बुरा तो लगना ही था, और ये बोल के हमने दर्द क्रिएट करना शुरू कर दिया। और क्रिएट करते हुए ये भी नहीं कहा हम क्रिएट कर रहे थे, हमने कहा उन्होंने मुझे हर्ट किया। और वो हर्ट को हम कितने साल पकड़ कर रख सकते हैं, और एक दिन मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी तब भी वो हर्ट मेरे साथ जाएगी। तो आज पक्का करते हैं, चाहे वो कोई कलीग है, दोस्त है, रिश्तेदार है, चाहे आपका स्पाउस है, पति पत्नी है, वो यहां से बैठ के सिर्फ शोर मचा सकते हैं, लड़ सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, अपशब्द भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी उनके मन की स्थिति किधर है? लेफ्ट हैंड किधर? किधर है लेफ्ट हैंड? हमेशा याद रखना, जो हमारे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे वो हमारे दर्द का कारण नहीं है, वो खुद, रिपीट, वो खुद दर्द में है। हम उनको दर्द में है न समझकर हम कहते हैं ये मेरे दर्द का कारण है, वो मेरे दर्द का कारण नहीं है, वो खुद दर्द में है। अब जब वो दर्द के थ्रू बिहेव कर रहे हैं, मुझे सिर्फ क्या ध्यान रखना है, मुझे राइट हैंड को कहां रखना है? ऐसे रखना है। सिर्फ हम प्रोटेक्ट नहीं होंगे उनके दर्द से, हमारी एनर्जी उनके दर्द को भी ठीक करना शुरू कर देगी। दिस इज शिफ्टिंग फ्रॉम बिकमिंग अ विक्टिम टू बिकमिंग अ हीलर। उनके दर्द का विक्टिम नहीं बनना, उनके दर्द को हील करने वाला बनना। एक बार हमारे पास सेंटर पर एक बहन आई, मैं इसलिए आपको ये शेयर कर रही हूँ कि आपके पास ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं जहां किसी ने किसी के साथ गलत किया है। वो गलत किया है और वो गलत को आप उस पर वर्क करने वाले हैं, लेकिन धीरे से उनको सिखा दो उस गलत को यहां नहीं क्रिएट करो, क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लाता है उनके लाइफ के अंदर। कुछ डॉक्टर्स आजकल रिसर्च कर रहे हैं कि जो भी उनके पास कैंसर या कोई ऐसे बड़ी एलिमेंट के साथ आता है, वो उनसे पूछते हैं कि पिछले 2-3 साल में आपके जीवन में कुछ हुआ है, एंड मोस्ट केसेस आंसर इज यस। तो आपके पास जो लोग आ रहे हैं उनके जीवन में कुछ ना कुछ हुआ है। तो बात ऐसे आती है, बात बीमारी नहीं लेकर आती है, लेकिन बात जब यहां पर बहुत ज्यादा चलती रहती है और हम उसको क्लीन नहीं करते, वो एक बीमारी का रूप लेती है। तो एज अ फ्रेंड आप उनको गाइड करेंगे कि ये कॉम्प्लिकेटेड है, हम इस पे वर्क करेंगे, कुछ दिन लगेंगे, महीने लगेंगे, साल लगेंगे, हमें नहीं पता, लेकिन इस पर वर्क करना आपको अभी से शुरू करना चाहिए, ये आप उनको राय दे सकते हैं। तो एक बहन आई थी सेंटर पर, वो अभी 40 इयर्स की एज की है। जब वो 5 साल की थी तब उसके पेरेंट्स को कहीं बाहर जाना था, तो उन्होंने उसको किसी के घर अपने फ्रेंड्स के घर पे छोड़ा था। वहां उसके साथ कुछ गलत हुआ जिसके लिए उसने हमेशा अपने पेरेंट्स को ब्लेम करके रखा अपने मन में, एंड एज अ चाइल्ड उसने अंदर रिकॉर्ड कर लिया कि मेरे पेरेंट्स की वजह से मेरे साथ गलत हुआ। और वो जो एक रिलेशनशिप होना चाहिए पेरेंट चाइल्ड का, वो उस तरह का क्रिएट नहीं कर पाई। उसका लोगों पर से विश्वास ही नहीं रहा, उसने रिश्ते कोई नहीं निभाए, वो अकेले ही रहती थी, अकेले। फिर 40 इयर्स की एज में वो सेंटर आना शुरू किया। एक दिन मेडिटेशन रूम में बैठी थी और बाहर आई और कहते हैं, ये उसके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, कहा, उस व्यक्ति ने जो किया उसने मेरे शरीर को अब्यूज किया एक बार। कहती उसने मेरे शरीर को अब्यूज किया एक बार, मैंने 35 इयर्स से खुद को अब्यूज किया है। एंड कहती है, टुडे आई जस्ट लेट हिम गो। उस दिन से जीवन चेंज हो गए। जीवन चेंज एक सोच है। हमें पता होना चाहिए कि सिचुएशनली हम विक्टिम हो सकते हैं किसी बात के, लेकिन इमोशनली कभी विक्टिम नहीं बनना है। इसीलिए कहा जाता है कि मन जीते जग जीत होता है। आप जग पर नहीं जीत पाएंगे, आपको सिर्फ मन पर जीतना है, लेकिन जब आपके मन पर जीत लिया, आपने जग पर जीत लिया अपने लिए, ठीक है ना। तो किसी ने भी कुछ भी किया हो, उनको ये रिमोट कंट्रोल ना पकड़ा देना कि मेरे दर्द का कारण भी तुम हो, ठीक है। रेडी, किसने हर्ट किया मुझे किसने हर्ट किया, मैंने, मेरी इंसल्ट किसने की, अच्छे से बोल दो ना, एक ही तो नाम बचा, सारी लिस्ट तो खत्म हो गई अभी। मेरी इंसल्ट किसने की, तो क्षमा भी किसने करना है और किसको क्षमा करना है। सिंपल फॉरगिवनेस का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही आप फॉरगिव करते हो दूसरे को, आप एक्चुअली खुद को कर रहे हो, आप खुद के यहां से वो क्या करते हो, क्लीन कर रहे हो। तो किसी भी संकल्प के लिए, किसी भी फीलिंग के लिए उंगली बाहर नहीं रखनी, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है, उनकी वजह से वहां बहुत कुछ हो रहा है गलत, लेकिन यहां जो हो रहा है वो चॉइस पूरी मेरी है। तो राजयोग वो अभ्यास है कि बाहर गलत हो रहा है, यहां अच्छा सोचना है, और जैसे ही यहां अच्छा सोचेंगे तो लॉ क्या है, संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि होती है। तो जैसे ही मन अच्छा हो जाएगा तो बाकी सब कुछ अच्छा, राइट बात है। तो हमें सिर्फ किसको अच्छा रखना है, पहले मन अच्छा रखेंगे तन अच्छा होना जाएगा, मन अच्छा रखेंगे जग अच्छा लगने लग जाएगा। तो आज से ब्लेम गेम फिनिश्ड, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा, मेरे हाथ में। इसको कहते हैं स्वराज्य, स्वराज्य। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है आज के, दूसरों को ब्लेम करना बंद करना है कि वो मेरे दर्द का कारण है। तो अभी हम कुछ संकल्प लिखेंगे। लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज को सीखना है, 3 दिन प्रैक्टिस करना है, 4th दिन यहां से मास्टरी लेकर जाने हैं। जो हम चाहते हैं कि हो, हमें लिखना है कि वो हो चुका है, क्योंकि लॉ ये है कि जो हम सोचेंगे वो होगा। तो संकल्प से सिद्धि मतलब जो आप चाहते हैं कि हो, चाहे मन की स्थिति में, चाहे शरीर के स्वास्थ्य में, चाहे रिश्तों में, चाहे आपके काम में। सपोज आप अपना ऑफिस खोल के बैठे हैं, कोई आ ही नहीं रहा क्लाइंट, कोई आ ही नहीं रहा, दो दिन हो गए कोई नहीं आया, दो हफ्ते हो गए कोई नहीं आया, तो क्या थॉट चलने शुरू हो जाएगी? क्या थॉट चलने शुरू हो जाएगी? बोलो, कोई आ नहीं रहा तो हम क्या सोचेंगे? कोई नहीं आ रहा, नॉर्मल है ना ऐसा सोचना, तो हम क्या सोचेंगे? कोई आ ही नहीं रहा। अब होगा लॉ शुरू हो जाएगा, हमने सोचना शुरू किया, कोई आ ही नहीं रहा, 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 कोई और आएगा सामने वो भी बोलेगा अरे आपके यहां तो कोई आ ही नहीं रहा, हम कहेंगे हाँ क्या करें कोई आ ही नहीं रहा, और सब मिलके प्यार से इतनी बार बोलेंगे कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, कोई आ ही नहीं रहा, कि जो आने का सोच भी रहा था, वेरी गुड, आपको पता है आंसर ना, जो आने का सोच भी रहा था वो कहेगा इधर नहीं है, दूसरे वाले ऑफिस में चलते हैं, हमारा माइंड चेंज हो जाता है। तो हमें क्या बोलना है जब कोई नहीं आ रहा? अब इसकी वोकैबुलरी को ध्यान से लिखना है, जैसे आपके जुडिशरी की वोकैबुलरी है, एक वर्ड इधर से उधर कॉन्ट्रैक्ट का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। तो हम कहते हैं नहीं मैंने तो पढ़ा था ऐसा कुछ नहीं लिखा था, फिर आप प्यार से बोलते ये वर्ड देखो ये वर्ड से सारा मीनिंग चेंज हो गया, अब बताएं कोई आ नहीं रहा क्या वर्डिंग यूज करनी है? आएगा, आ गया है, और आने वाले हैं, और आप हाईएस्ट एनर्जी लाइन बोलना, आप बोलना इतने लोग आ गए, इतने लोग आ गए, पानी पीने को भी टाइम नहीं मिल रहा, इतनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। आपको पता है जब 1972 में दादी जानकी जी यहाँ से लंदन, परमात्मा ने बोला अभी देश में सेवा शुरू हो गई, अभी विदेश में करनी है, इतनी छोटी सी थी, 5 फीट के, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, एल्डरली थी, और वहां पर हमारा नियम है कि हम जो भी सेवा कर रहे हैं उसकी कोई हमने फीस नहीं लेनी है, तो फ्री में तो वैसे भी वैल्यू नहीं थी विदेश में उस टाइम, ये फ्री में दे रहे हैं, पता नहीं ऐसी बेकार चीज होगी इसलिए तो फ्री में दे रहे हैं ये। तो दादी गई, कोई आता ही नहीं था सेंटर पर, कोई नहीं आता था, बैठिए बैठिए दिन बीते महीने बीते कोई नहीं आ रहा है, बट उन्होंने पता है क्या किया, तो वो बाद में बताती है, कहती ऐसे मैं बैठी थी अपनी सीट पर, कारपेट बिछा हुआ था, कारपेट पे फूल थे, तो वो रोज की जो क्लास होती है वो फूलों को सुनाती थी, कहते हर बच्चा परमात्मा का बैठा है और रोज सुन रहा है और रोज सुन रहा है और सुन रहा है, वो कभी भी हार के वापस आ सकती थी कि नहीं होता ये विदेश में, देश में ही ठीक है। 1972 में कोई मेडिटेशन की बात नहीं कर रहा था विश्व के अंदर भी, वो रोज उस कारपेट के फूलों को सुनाती गई सुनाती गई सुनाती गई, और इस संस्था की सेंटर्स को 140 देशों में ले गए उसके बाद से। ये संकल्प से सिद्धि होती है, और ये किसी एक के पास ये शक्ति नहीं है, ये हर एक के पास है। तो रूल सीख लिया ना, जो चाहते हैं कि हो वो हो बोलना है कि ऑलरेडी हो चुका है, तो कोई नहीं आ रहा है तो हम बोलेंगे बहुत लोग आ रहे हैं, तो बहुत इजी है, झूठ बोलना है सिर्फ। संकल्प से सिद्धि मतलब झूठ बोलना है, मैं अभी टेंशन में हूं लेकिन मैं बोलती हूं मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। अगर मैंने ये बोलना शुरू कर दिया मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, तो उतनी थी नहीं। अच्छा, उंगली को ऐसे रखें, आपको अभी टेंशन हो रही है इतनी है, अभी अभी आए कुछ 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 सुना कुछ कुछ, और टेंशन इतनी है। अब आप सिर्फ बोलना शुरू करो, बहुत टेंशन हो रही है मेरे को, बहुत टेंशन हो रही है मेरे को, बहुत टेंशन हो रही है। फिर आपके घर के लोग बोलेंगे इतनी बड़ी बात हो गई, आपको टेंशन तो होनी है, नेचुरल है, होगी। इतनी बार रिपीट करते करते वो जो 40% था वो क्या होने लगेगा, 50 बन जाएगा। कौन कौन अग्री करता है 40-50 बन जाएगा? क्या करने से बना? सिर्फ सोचने से। इसको संकल्प से सिद्धि, अब इसको पकड़े, ये बहुत जरूरी है। अगर मेरी सोच मेरी टेंशन को 40 से 50 लेके जा सकती है, तो मेरी सोच मेरी टेंशन को 40 से 10 पर लेकर आ सकती है। क्या सोचना है उसके लिए? बढ़ाने के लिए क्या सोचना था? बहुत टेंशन, बहुत टेंशन, बहुत टेंशन। घटाने के लिए क्या सोचना है? कोई टेंशन नहीं, नहीं बोलना, टेंशन वर्ड आ जाएगा उसके अंदर। राइट वर्ड यूज करना है। वोकैबुलरी क्या सोचेंगे? हाँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, सब बढ़िया है, जो हो रहा है वो मेरे फायदे के लिए हो रहा है, मेरे कल्याण के अलावा कुछ नहीं होता है। आप सिर्फ सोचते जाएं, बोलते जाएं, पहले स्थिति ठीक हो जाएगी, और जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो परिस्थिति पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो बदल जाएगा। तो संकल्प से सिद्धि, अब लिखना शुरू करें संकल्प जो हमें रोज करने हैं, दिन में कई बार करने हैं लेकिन सुबह और रात को तो जरूर करने हैं। इसमें आप अपने जीवन की जो सिचुएशन होगी उसका संकल्प लिखेंगे। अभी के लिए हम बेसिक लिखेंगे सिर्फ। पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। अब शक्तिशाली आत्मा का मीनिंग क्या है? सिचुएशन का असर मुझ पर नहीं होगा, लोगों के व्यवहार का असर मुझ पर नहीं होगा, मेरा स्कोर 10/10, दैट इज शक्तिशाली आत्मा। जैसे शक्तिशाली बॉडी, दूसरे के वायरस का असर नहीं होता है, इम्यूनिटी सिस्टम हाई। तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। दूसरा, मैं हमेशा शांत हूं, मैं हमेशा खुश हूं। शांत मतलब अगर आप एक कोर्ट केस में आर्ग्यू भी कर रहे हैं ना जोर जोर से, आप अंदर पीसफुल होके आर्ग्यू करेंगे। एजिटेशन अंदर जरूरत नहीं है, नहीं जरूरत है। शब्दों की शक्ति कम हो जाती है जब हम अंदर एजिटेटेड होते हैं। आपको बहुत फोर्सफुली कोई लाइन बोलनी है तो वो लाइन में पावर चाहिए, और लाइन में पावर के लिए यहां स्टेबिलिटी और साइलेंस चाहिए होता है। सामने वाले पर प्रभाव पड़ जाता है उसका, नहीं तो हम इतना बोलते हैं वो शब्द सब स्कैटर हो जाते हैं, उनमें ताकत नहीं बचती है कोई भी। तो मैं शांत हूं, मैं हमेशा खुश हूं। हम में से किस किस को खुशी चाहिए? तो कभी नहीं बोलना आज से ये लाइन के मुझे खुशी चाहिए। मैं हमेशा खुश हूं, आई एम ऑलवेज हैप्पी। मैं सबको शक्ति देने वाली हूं, आई एम अ गिवर। एंड सब मतलब सब, पवित्र फैमिली, क्लाइंट्स, सब सब सब, एवरीबडी आई मीट, आई एम द पावर विच एम्पावर्स अदर्स। मैं सबको शक्ति देने वाली हूं। एक लाइन ब्लैंक रखेंगे, अपनी कोई भी संस्कार जो आप चेंज करना चाहते हैं, अपनी कोई भी आदत, उसको आप संकल्प बनाएंगे। उसका वोकैबुलरी का ध्यान रखना है, जो हम बनना चाहते हैं हमें लिखना है मैं ऑलरेडी हूं। सबको पता है उनको कौन से अपनी नेचर चेंज करनी है, ब्लैंक भी लग सकते हैं अभी के लिए। अगला संकल्प अपने शरीर के लिए, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है और हमेशा रहेगा। परफेक्ट हेल्दी बॉडी ऑलवेज, परफेक्ट हेल्दी बॉडी ऑलवेज। अगर हेल्थ में कोई भी बात है तो हमें अगला संकल्प उसके लिए बनाना है। हम क्या करते हैं, जो बीमारी है हम उसको रिपीट करते रहते हैं। हम कहते हैं मुझे डायबिटीज है, है है बोलेंगे तो वो कभी नहीं जाएगा। पहली बात तो मुझे तो है भी नहीं, है तो शरीर को, मुझे है नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरे शरीर को है। लेकिन उसको भी रिपीट नहीं करना है। हमें क्या कहना है, अगर डायबिटीज है तो हमें क्या कहना है, जो चाहते हैं कि हो वो कहना है कि है। हम क्या चाहते हैं, शुगर लेवल क्या हो, नॉर्मल, तो लिख दीजिए माय शुगर लेवल इज नॉर्मल। ये सिर्फ उनके लिए जिनका नॉर्मल नहीं है। हाँ, जिनका नॉर्मल है उनको कुछ नहीं लिखना है, उनको सिर्फ लिखना मेरा शरीर स्वस्थ निरोगी हमेशा रहेगा। कोई भी पैरामीटर अगर नॉर्मल नहीं है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोई दर्द है इधर उधर, परफेक्ट हेल्दी। तो अगर मेरा शुगर लेवल नॉर्मल नहीं है तो हम लिखेंगे माय शुगर लेवल इज नॉर्मल। वैल्यू लिखेंगे HbA1c या जो भी शुगर लेवल आपको फास्टिंग लिखना है, जो नॉर्मल है वो लिखेंगे, जो अपनी है वो नहीं बोलेंगे। ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो लिखेंगे माय ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल 120/80। फिगर नॉर्मल का लिखना बहुत जरूरी है, हमारी हर सोच हमारी बॉडी पर जाती है। दवा अपना काम करेगी, मन का संकल्प अपना काम करेगा। फिर अपना संकल्प अपने रिश्तों के लिए, मेरी सबसे बात अच्छी बनती है, मेरा हर रिश्ता मजबूत है, मेरा हर रिश्ता मजबूत है। अगर किसी के साथ भी थोड़ा सा अनबन है, उनका नाम लिखें और लिखें इनके साथ मेरा रिश्ता बहुत बढ़िया है। हम क्या रिपीट करते हैं, हम कहते हैं मेरी बनती नहीं उनसे, पता नहीं उनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, कितना भी करो वो गलत ही करते हैं। जो आप रिपीट करेंगे वो तथास्तु होता है, संकल्प से सिद्धि होती है। तो मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स हम सेल्फ क्रिएट करते हैं जस्ट बाय रिपीटिंग देम। तो रिपीट द ऑपोजिट, प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने लग जाता है। अगर पुरानी कोई बात पकड़ के रखी हुई है उसके लिए लिखते हैं, past is past, it's over, I forgive, I forget. सिर्फ बोलना है रोज, I forgive, I forget. दुनिया बोलती है I cannot forgive, I cannot forget. तो तथास्तु हो जाता है. बीती सो बीती. हाँ जी, हाँ, आई कैन फॉरगिव बट आई कैन नॉट फॉरगेट. जो फॉरगेट नहीं करेंगे वो फॉरगिव नहीं कर सकते, क्योंकि वो दर्द अभी भी पकड़ा हुआ है, इसलिए फॉरगेट नहीं होता. फॉरगेट वही चीज नहीं होती है जो दर्द अभी भी है. कितनी चोटें लगी होंगी लाइफ में, हमें सारी चोटें याद नहीं होती, जिसका निशान बचा है ना वही याद है. कितनी बार साइकिल से गिरे होंगे याद नहीं होगा, लेकिन जिसका चोट का निशान अभी तक है वही हमें याद है. ओ वो दिन मैं ये कर रहा था, मैं गिरा. जिसका निशान रहता है वो ही याद रहता है. ऐसे जीवन में भी कितनी बातें हुई है हमें नहीं याद रहती है, फॉरगेट हो जाती है. फॉरगेट वो होगा जहां पेन नहीं क्रिएट किया. फिर अगला संकल्प अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए करना है, वो आपको बनाना है जो आप चाहते हैं कि हो. वैसे आपका संकल्प देश के लिए बहुत अच्छा होने नहीं वाला, लेकिन फिर भी वो आपका प्रोफेशन है कि आपके लिए आपके पास क्लाइंट्स बहुत सारे बढ़ जाए. इसका मतलब दुनिया में क्या हो, कले कलेश और बढ़ जाए, है ना. ठीक है, इट्स ओके. आप अपने लिए लिखें, आप अपने लिए लिखें, नहीं अपना लिखें जो आप चाहते हैं कि हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपने प्रोफेशन की इंटेग्रिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाएं, अपने कर्म के, कल वो हम देखेंगे, बट अपने कर्म की एनर्जी को बहुत ऊपर उठाएं. और फिर आखिरी संकल्प, आई एम सेफ, I am secure, my destiny is perfect. मैं सुरक्षित हूं और मेरा भविष्य अति श्रेष्ठ है. And last, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है. अब इसमें आपकी लाइफ में कोई भी सिचुएशन आएगी ना, आप फटाफट पहले 10 सेकेंड निकाल के उस सिचुएशन के लिए एक संकल्प सही वाला बनाएं, फिर सिचुएशन को सॉल्व करें. हम इसको यूज करके हर चीज में अप्लाई करते हैं और बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो असंभव संभव होती हैं. दुनिया कहते हैं मैजिक, लोग कहते हैं पावर ऑफ माइंड. और हम सबने कोई ना कोई मैजिक किया अपने लाइफ के अंदर. जो सबने सोचा होगा नहीं हो सकता, वो आपने करके दिखाया, क्योंकि आपने एक संकल्प पकड़ के रखा कि ये होना ही है. संकल्प तथास्तु होता है. अब इसको छोटी छोटी चीजों के लिए भी करना है. इसको अब करना कब है, सबसे इंपॉर्टेंट रात को सोने से पहले, क्योंकि जब आप सोएंगे अब तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा. ये संकल्प उस सबकॉन्शियस माइंड में जाने चाहिए नींद में. तो रात को सोने से पहले के आखिरी संकल्प ये होने चाहिए. एक और संकल्प आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं निंदा स्तुति में एक समान हूं. निंदा स्तुति एक समान. पेंडुलम घड़ी का सेंटर में रहना चाहिए. जितना पेंडुलम महिमा में इधर जाता है उतना ही निंदा में उधर जाता है. तो आपको सफलता मिली. कोई आपके पास जब आता है वो हम कल फिर देखेंगे, लेकिन जो आपके पास आ रहा है वो भी अपने कर्म के साथ भी आ रहा है. तो उस सफलता में और कभी कभी उस हार में भी सामने वाली आत्मा की कार्मिक जर्नी का बहुत बड़ा रोल होता है. तो इसीलिए महिमा मिली तो उसको भी समर्पण करें, परमात्मा का शुक्रिया. और निंदा मिली तो उनको दुआएं दे दें जिन्होंने निंदा दी. तो दोनों केस में हमारा हाथ कैसे है, ऐसा. महिमा मिली तो ऊपर भेज दो, और निंदा मिली तो उनको दुआएं भेज दो. बस देवता बन के रहना है, लेवता नहीं बनना, ऐसे नहीं करना है. लेनी नहीं है एनर्जी किसी की. महिमा भी ईगो को बढ़ाती है, महिमा ईगो को बढ़ाती है. जैसे जैसे आप प्रोफेशनली और एक्सेल करते जाएं और ऊंचा 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 औधा मिले, नम्रता उतनी बढ़नी चाहिए. नहीं तो वो फिर सफलता ही हमारी कमजोरी का कारण बन जाएगी अगर हमारा अहंकार बढ़ता गया उसके साथ. इसलिए रोज सरेंडर करो अपने सक्सेस को, अपनी महिमा को. एक संकल्प और लिख सकते हैं. अगर आपको लगता है कि आप बहुत बिजी होते हैं और आपके पास टाइम नहीं होता, तो आपको लिखना होगा आई एम इजी, आई हैव लॉट ऑफ टाइम. मैं इजी हूं और मेरे पास बहुत समय है। अब इसको करना कब है? रात को सोने से पहले आइडियली एक डायरी रखें अपने तकिए के पास और सोने से पहले एक मिनट निकाल के इसको लिखें। कल आपके लाइफ में शेड्यूल में प्रोफेशनली क्या क्या होने वाला है उसके लिए भी आप संकल्प एक दिन पहले रखें। हम कहते कल पता नहीं क्या होगा उस केस का, आप उसमें संकल्प लिखें कि जो सही है वही होगा, जो सही है वही होगा। तो एक रात को सोने से पहले लास्ट थॉट, उसके बाद फोन नहीं देखना, बातें नहीं करनी, लास्ट बीज है ये जो अंदर जाएगा। दूसरा, सुबह उठते भी सबकॉन्शियस एक्टिव है, तो बिस्तर से उठते हुए परमात्मा का शुक्रिया, बिस्तर से उठते हुए मैं शक्तिशाली हूं, मैं शांत हूं, मैं खुश हूं, गाना बना लो इसको सुबह का, दिन की शुरुआत हाई एनर्जी पे होनी चाहिए। एंड थर्ड टाइम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले। आप अगर अपने क्लाइंट से मिल रहे हैं और यहाँ पानी का ग्लास है और वो सारी बातें हो गई आपकी, तो वो पानी ने सारा अब्सॉर्ब कर लिया है। वो पानी तो एक तो पीना ही नहीं, वैसे तो वो पानी कभी नहीं पीना जो आपके कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है। आप उस पानी को छोड़ दो, आप फ्रेश पानी यूज करो। आप उस पानी को पौधे पे भी डाल के देख सकते हो कि उस पानी का पौधे पर क्या असर पड़ जाएगा, तो आप सोच नहीं सकते इसका आप पे क्या असर पड़ता है। तो उस टाइम पे ना पानी पियो उस कॉन्वर्सेशन के दौरान, ना चाय कॉफी बिस्किट, कुछ नहीं खाना पीना जब हैवी एनर्जी कॉन्वर्सेशन चल रही है। तो खाने से पहले, पानी से पहले 3 सेकंड रुककर परमात्मा की शक्ति का आह्वान करते हुए, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शांत हूं, हैप्पी हूं, सबको देने वाला हूं, 4-5 संकल्प, क्योंकि अन्न और पानी संकल्पों को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, और जो वो अब्सॉर्ब करता है वो मन की स्थिति बन जाती है। तो सिर्फ सुबह और शाम करेंगे तो वो काफी नहीं होने वाला है, अन्न और पानी का बहुत 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 ज्यादा रोल है। और अन्न और पानी भी इस समय दुनिया के दर्द से आ रहा है, दुनिया के तनाव के वाइब्रेशन। पानी कहां से आता है? शहर का पानी है, इसलिए लोग कहते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो। आप शहर बदलो, आपके मन की स्थिति चेंज हो जाएगी, क्योंकि हवा बदलती है, वायुमंडल बदलता है, पानी बदलता है। यहां आप 3 दिन रह रहे हैं, आपका पानी अलग है, आपका अन्न अलग है। यहां जो भोजन बनता है वो मेडिटेशन की स्थिति में बनता है, ध्यान रखा जाता है, जैसे मंदिर में प्रसाद बनता है, गुरुद्वारे में लंगर बनता है, ध्यान रखा जाता है कि सिर्फ परमात्मा की याद में बनता है। और फिर जब पूरा भोजन बन जाता है तो थोड़ा 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 सारा लेकर एक थाली में लेकर मेडिटेशन रूम में जाया जाता है, 10 मिनट उसके साथ फोकस्ड मेडिटेशन की जाती है, वापस आकर वो खाना सबके खाने में फिर मिलाया जाता है, फिर वो आप तक काफी स्टेजेस के बाद पहुंचता है। और इसीलिए अगर आप सिर्फ अन्न भी खा लेते हैं तो आपके मन को स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे 3 दिन अन्न भी आपके मन पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो आपको अपने अन्न और पानी का बहुत 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 ज्यादा ध्यान रखना है। कर सकते हैं 3 सेकंड पॉज, 3 सेकंड करना है, एनर्जी को चेंज करना है। आज रात का हम भोजन साइलेंस में करेंगे। करना चाहेंगे मौन में भोजन? यस, बिल्कुल मौन में शुरू करेंगे, परमात्मा की याद से करेंगे, फिर उसमें ये संकल्प रिपीट करेंगे, मैं शक्तिशाली, मैं शांत, मैं खुश, फिर भोजन को स्वीकार करेंगे, मौन में करेंगे। कौन कौन मौन में करेगा? ये हमारी इमोशनल हेल्थ को बढ़ाता है। तो यहां से उठना, चलना, भोजन करना और इस हॉल में जब वापस आना, ये 1 घंटे का समय हमारा मौन का है। आज सुबह 4 बजे कौन कौन आया था? कल सुबह 4 बजे कौन कौन आएगा? वेरी गुड। यहां आकर अगर आप सो भी गए तो भी नो प्रॉब्लम। हाँ, बिल्कुल नो प्रॉब्लम है, क्योंकि शुरू शुरू में थोड़ी आता है मेडिटेशन करना हमको, लेकिन आप वाइब्रेशन को क्या कर रहे हैं? अब्सॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए उठकर आना जरूर। योग मेडिटेशन नहीं लगता है किसी का भी पहले 1-2 दिन के अंदर, लेकिन उठकर हम उस वाइब्रेशन के साथ ट्यून करना शुरू करते हैं। ठीक है, 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। आप कोई एक चीज आज पक्की करें इस साइलेंस में कि आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या एक चेंज लाने के लिए रेडी हैं। यहां से प्रतिज्ञा करके जाना है
सोच में, शब्दों में, व्यवहार में, अन्न में, संग में, इन सब को लाइफस्टाइल कहते हैं। इसमें कोई एक प्रतिज्ञा कीजिए अपने से, और उसके लिए एक संकल्प बनाइए कि ये हो चुका है, आई हैव डन इट, ये बहुत सहज है, ये मेरे लिए नेचुरल है। रात को जल्दी सोना, अमृत वेले उठ जाना, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, ये मेरे लिए नेचुरल है। शाकाहारी भोजन खाना, किसी के दर्द का खाना नहीं खाना, ये मेरे लिए सहज है। खाने के टाइम कोई फोन नहीं, टीवी नहीं, परमात्मा की याद में खाना खाना, ये सहज है। मैं स्वराज्य आत्मा, मन का मालिक, मेरा संकल्प मेरा भाग्य बन जाता है। अगला एक घंटा मेरा खुद के साथ का समय है, फोन नहीं और बातें भी नहीं, मौन रखेंगे, मन का भी मौन रख सकते हैं, और अगर फिर भी कोई सोच चलती है तो सिर्फ परिवर्तन क्या करना है, मंगलवार यहाँ से जाने के बाद उसी पर सोच चलाएंगे। अब हम उठते जाएंगे, बिल्कुल साइलेंस में उठेंगे जैसे फरिश्ते उठते हैं, उठते जाएंगे सभी एकदम साइलेंस में उठेंगे। जब मन साइलेंट होता है तो शरीर भी अलग तरह से चलता है। सभी उठते जाएंगे, चलते जाएंगे।